नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान में 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसकी कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत ने छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण के अवसर भी प्रदान किए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि MT मैरीवैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉ जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल-पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में लगभग 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यह स्थिति तालिबान की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्गेट गैगनर ने कहा कि 7 से 18 वर्ष की करीब 38 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। इनमें 26 लाख से अधिक किशोरियां शामिल हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने की अनुमति नहीं है। सुश्री गैगनर ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर जारी प्रतिबंधों का अफगानिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के रॉयल कमीशन के सहयोग से रेगिस्तानी सामंजस्य सितार की धुने नामक एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाया गया। संध्या का मुख्य आकर्षण सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खान का प्रदर्शन था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई को प्रतिबिंबित किया। संयुक्त अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल एजाज खान ने भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बल दिया। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने आज गुवाहाटी में फ्लेवर, सुगंध और आयुष क्षेत्रों पर केंद्रित ब्लू वैली क्लस्टर का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सतत मूल्यों, श्रृंखलाओं, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्रों और औद्योगिक साझेदारियों के विकास में यूरोप, असम और व्यापक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाय, जैविक खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक सुगंध और आयुष उत्पादों जैसे क्षेत्रों में यूरोप के साथ सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। इसराइल और ईरान के बीच आज प्रत्यक्ष संघर्ष में आई अस्थायी शांति कायम होती दिखी, जिससे पश्चिम एशिया में फैली बड़े पैमाने पर सीमा पार झड़पों की तत्काल वापसी की आशंकाएं कुछ हद तक कम हो गईं। हालांकि व्यापक और स्थायी युद्ध विराम की संभावनाएं अनिश्चित बनी रहीं, क्योंकि अन्य मोर्चों पर विशेष रूप से दक्षिण लेबनान में लड़ाई जारी है। सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में भारत के एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी, पुरुष डबल्स जोड़ी, दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में अमेरिका के ऑर्डन क्वान ली और स्टेनली जिंक को 21-13 से हराया। हालांकि भारत की दूसरी पुरुष डबल्स जोड़ी अच्युत्यादित्य राव और अर्जुन रेड्डी पोचाना पहले दौर में ही बाहर हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी, पुरुष डबल्स जोड़ी, दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।